ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो हम पढ़ेंगे भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज श्लोक संख्या 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावास्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समाग्रं प्रविलीयते।
अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना वृत्त से विचलित नहीं होता। अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक बल नहीं भोगना पड़ता है।
ओम ज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामि नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवाणी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपदां सहगना ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधकांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंचकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में भगवान बताते किस प्रकार अगर व्यक्ति गुणों को पार किया और अपना काम कर रहे परंतु उसके साथ उनके पास ज्ञान भी है, ज्ञान अवस्थित चेतस, मतलब उनको उनके पास दिव्य ज्ञान है जिसके बारे में वास्तव में कृष्ण इसी अध्याय में अध्याय 4 में पूरा बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये दिव्य ज्ञान पहले भी विवस्वान को दिया, परंपरा के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रामाणिक परंपरा से यहाँ इस पृथ्वी तक आ गया और बाद में परंपरा नाश हो गया और भगवान कृष्ण ने यही दोबारा ये एक ही ज्ञान योग प्रोक्त पुरातन एक ही ज्ञान दोबारा अर्जुन को दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भक्तोसि मे सखा चेति। कृष्ण मतलब अर्जुन कृष्ण के भक्त हैं और उनके मित्र हैं। तो वास्तव में ये कि भक्त और भगवान के मित्र कैसे होना चाहिए वो आगे कृष्ण तो बताते हैं। जैसे एक श्लोक पहले भगवान ने कहा कि किस प्रकार का व्यक्ति किस प्रकार उनका आचरण होना चाहिए कि कि गुणों को पार करेंगे. यादृच्छाला बसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिदावसिदोच कृत्वापि नानिबध्यते. कब एक बद जीव ये बद अवस्था से को पार कर सकते हैं? जब व्यक्ति संतुष्ट है, जो भी कुछ अपने आप आएगा इसी से पूरी तरफ से संतुष्ट है. और द्वंद्व अतीतो, द्वंद्व से मुक्त है. द्वंद्व मतलब ठंडी गर्मी, दिन रात, अच्छा बुरा, ये सब. अभी किसी को ठंडी लग रहा है या सबको गर्मी लग रहा है? सब ठीक है, सब परेशान है? सब नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि कोई है जो द्वंद्वातीत है, द्वंद्व से मुक्त हो गया. वास्तव में ये अगर हम भक्ति कर रहे हैं, ये होना चाहिए, कम से कम ज्ञान होना चाहिए कि कैसे द्वंद्व को पार करना, कि ये पहला कदम है. यहाँ पर इसी श्लोक, उस श्लोक पहले इस जो अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान हो सकते हैं हमारे पास है, हम गीता पढ़ते हैं और हम सुनते हैं कि हम आत्मा हैं. जैसे श्रील प्रभुपाद इसी तात्पर्य में उन्होंने कहा कि कौन ये बल अवस्था को पार कर सकते हैं, और विशेष जो तीन गुणों से मोहित नहीं है और बद नहीं है तीन गुणों से, तो द्वंद्व से मुक्त होना चाहिए. और विमत्सरा द्वेष से, हाँ विमत्सरा मतलब बिना द्वेष, उनके पास कोई द्वेष नहीं है, किसी को द्वेष नहीं कर रहे. सामदर्शिना ये भी एक है शब्द है, किसी को भेदभाव नहीं कर रहे कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ऐसे. तो ये सब समझना है. तो अभी हम सुनते हैं इस चीजों के बारे में, परंतु अनुभूति प्राप्त करना है. तो अभी इस श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म तो करना है, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द आते हैं कि यज्ञाचरत कर्म, कर्म है, परंतु कर्म इस प्रकार करना कि यज्ञ हो जाएगा. तो ये कैसे होगा? श्रील प्रभुपाद सरल भाषा में उन्होंने कहा कि सारे कार्यों भगवान की प्रसन्नता के लिए करना. अगर व्यक्ति सारे सारे जो काम है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो सब कुछ यज्ञ ही होगा, क्योंकि यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु की प्रसन्नता. और जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा आदि विष्णु, कृष्ण आदि विष्णु है, ईश्वर परमा कृष्ण सचित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण. तो सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना. ये श्लोक भी आते गीता में कि माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यतन ब्रह्म भूय कल्पते. कि अगर व्यक्ति भक्ति योगेन सेवते, अगर भगवान की सेवा करते हैं, तब तीन गुणों को पार कर सकते हैं. तो इसका अर्थ है कि द्वंद्व को भी पार करेंगे. तो इस ये सब अगर हम द्वंद्व को पार कर सकते हैं, तब दृढ़ता आएगी भक्ति में. कृष्ण ने कहा कि ये शम द्वंद्वगताम पापम जननम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ा व्रतः. कि दृढ़ता के साथ भक्ति करना ये संभव होगा अगर हम भौतिक आसक्ति पाप त्वंतगताम पापम पाप खत्म करेंगे, पाप त्याग करना होगा, और पुण्य कर्म करना, और उसके बाद द्वंद्व और मोह से मुक्त होना चाहिए. तो वास्तव में पाप करने से और भौतिक आसक्ति बनाए रखने से हम द्वंद्व में रहेंगे. और जो जो पुण्य के बारे में बात हो रहा है, पुण्य भी अगर पुण्य हमारे लिए है, मतलब कि मैं कुछ पुण्य कर्म करता हूँ या कुछ व्रत करता हूँ जिससे मुझे ऐसे पुण्य मिलेगा कि मुझे पैसा संपत्ति यश रूप अच्छा कुल या शिक्षा एजुकेशन एग्जाम पास हो जाएगा, अगर ये पुण्य करने का उद्देश्य ये है तब भी हम द्वंद्व में रहेंगे मोह माया में तीन गुणों पर के अंदर में। तो इसीलिए जो दिव्य ज्ञान है ये अलग है, ये पुण्य जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से और भगवान की सेवा करने से वो जो हम मिल जो जो भी व्यक्ति कर रहे जो जो वो पुण्य जो मिलता है वो अलग प्रकार का है, वो अविनाशी है क्षणिक नहीं है, क्योंकि जो भी तीन गुणों के अंदर में पुण्य है अपने स्वार्थ के लिए वो सब क्षणिक है। कृष्ण ने कहा कि क्या है अल्पमेदसम ये क्या है श्लोक, उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति क्षणिक फल के लिए प्रयास कर रहे हैं देवों तो की पूजा करना क्षणिक फल के लिए वो अल्पमेदसम अल्पमेदसम मतलब बुद्धि बहुत कम, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रयास का अंतवातु फलम देशम यस ये श्लोक है कि फल जो खत्म हो जाएंगे कुछ समय के बाद अगर उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हम जानते पहले से कि खत्म हो जाएगा कि उसमें कोई लाभ नहीं है तो कौन ऐसा चीज के लिए प्रयास करेंगे। अगर आप बिजनेस करने के लिए जाएंगे और पहले से आपको कोई बताएंगे कि इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, अब जितना भी इन्वेस्ट करेंगे वो बैंक मतलब जैसे वो कोई कंपनी बैंक रोत हो जाते बस पूरा पूरा फेल, तो अगर पहले से आप जानते कि ऐसा होगा तो उसमें जाएंगे इन्वेस्ट करेंगे आप करोड़ रुपया उसमें नहीं करेंगे। तो पहले समझना चाहिए कि इस संसार में जो भी हम कुछ कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए वो सब निष्फल है, वो सब क्षणिक है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये जो द्वंद्व है जो हम कुछ अच्छा मिलना चाहते हैं ये कुछ दुख जो है जो जिससे हम निकालना चाहते हैं ये बंद करना चाहते हैं ये बचाना चाहते तो वो स्वप्न जैसा है, क्योंकि स्वप्न में अगर व्यक्ति सोच रहे हैं कि कोई शेर आ गया ये क्या बोलते सिंह लायन तो वो मुझे खाना चाहते और हम दौड़ते दौड़ते बहुत डर लग रहा है बहुत लग रहा है कि बहुत गंभीर परिस्थिति है हम मर जाएंगे अभी तो भागना पड़ेगा डर लग रहा है, लेकिन ये स्वप्न है। जब हम उठ जाते हैं हाँ ठीक है केवल स्वप्न ही था, और अगर हम सोच रहे कि अभी मैं राजा बन गया मेरे पास पूरा संपत्ति है पूरा दुनिया का सम्राट हूँ यश संपत्ति रानी सेना कुछ भी सब है मेरे पास तो लग रहा है कि मैं अभी सुखी हूँ, लेकिन सुबह जब उठ गया अलार्म आ गया तब याद आ गया कि नहीं मुझे दोबारा नौकरी करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये किस प्रकार का सुख है, ये स्वप्न है वास्तव में है नहीं, ये इसको बोलते द्वंद्व, कभी है कभी ऐसा है कभी दुख है कभी सुख है। स्वप्न क्षणिक चीज है, लग रहा है कि है परंतु जब हम उठ जाते हैं हम समझ पाते हैं कि वो केवल स्वप्न ही था। श्रील प्रभुपाद दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे सर्दियों में ठंडा पानी में स्नान करना ये पीना दुख लग रहा है बहुत बहुत पेन बहुत दर्द अच्छा नहीं लग रहा है, वही पानी गर्मियों में बहुत अच्छा लग रहा है ठीक, तो क्या पानी अच्छा है ये गलत है। श्री प्रभुपाद ने कहा कि पानी तो पानी है अच्छा भी नहीं है गलत भी नहीं है, ये हमारा मोह है कि ठंडी है ये गर्मी है अच्छा लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है। इसको बोलते हैं द्वंद्व, पानी एक ही है। हम गलत पहचान करते हैं कि मैं शरीर हूं, मन के अंदर मन का जो कल्प विकल्प है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, हाँ मेरा इच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा, अभी अभी गर्म पानी से स्नान करेंगे तो अच्छा लगेगा, और अच्छा नहीं लगेगा ठंडा पानी, तो इसीलिए कुछ करना है। तो ये मन मन के अंदर में है, जब तक हम मन अवस्था में है तब तक ये द्वंद्व मोह रहेगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बताया इसी परिस्थिति में कि क्या करना चाहिए, जब ये द्वंद्व के अंदर सुख और दुख आता है और जाता है, तो यही श्लोक है कि यही संस्पर्श नहीं तन स्थिति स्वभाव आता है कि हमें टॉलरेट करना है, सहन करना है। शीतोष्ण सुख दुख अगाम पायनोमित्यस्तम स्थिति भारत, कि सुख और दुख आने वाला और जाने वाला है, आगम आगमन पायनो, आना और जाना है, वो आएंगे और जाएंगे, जैसे गर्मी और ठंडी आते और जाते हैं, वो सहन करना और साथ साथ क्या करना है, कृष्णा जो हमारा मुख्य कर्तव्य है, जैसे श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में उन्होंने कहा कि समझना कि हम कृष्ण के दास हैं, उन्हीं की सेवा करना है, ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। वो हमारा मुख्य काम नहीं है कि अभी ठंडी है तो गरम गरम कपड़ा चाहिए और गरम पानी चाहिए, हाँ ये तो प्राप्त करना जरूरी भी है लेकिन मुख्य चीज नहीं है। अगर नहीं है, अगर फिर भी ठंडी लग रहा है तो तब क्या करेंगे, तो तब भक्ति नहीं करेंगे, तब हरे कृष्ण जप नहीं करेंगे, तब सुबह उठेंगे नहीं, करना ही है। जैसे जब बहुत बहुत गर्मी है तब उस समय भी ऐसा नहीं है कि बोलेंगे आज अभी तो भोजन बंद करेंगे, कुकिंग नहीं करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, ऐसा है फिर भी बनाते, उस समय ऊपर से गर्मी है, पंखा चलाते भी फिर भी गर्मी लग रहे हैं, फिर भी उस समय खाना बनाना पड़ता है, तो वो उस समय बंद नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति दुख और सुख में करना है, और ये जो जो द्वंद्व है वो जो अच्छा लग रहा है और परेशान हो रहा है वो सहन करना, तम स्थिति भारत समाज के किए मद्रास प्रशास्तु काम दे, केवल इंद्रिय और इंद्रिय के जो विषय उनका स्पर्श है, टच है, तो कभी कभी अच्छा लग रहा है कभी नहीं, वो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, ज्यादा ध्यान देना कृष्ण भक्ति में। तो अगर इस प्रकार व्यक्ति कर रहे हैं तो साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, मतलब कृष्ण ने कहा कि ज्ञान क्या है, जब अर्जुन ने पूछा 13वां अध्याय में ज्ञान के बारे में, तो कृष्ण ने कहा कि समझना कि जो शरीर है, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान महापर्ण, शरीर और आत्मा ये तो अलग है, जिनके पास ज्ञान ये है इसके बारे में है वो ज्ञानी है, जिनके पास ये ज्ञान यही ज्ञान है। जब तक हम सोचे कि मैं ही शरीर हूं तब तक हम अज्ञान में हैं, तो ये हमारा समस्या है अभी, जब तक हम सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूं तब हम परेशान होंगे, तब ठंडी लगेगा, तब गर्मी लगेगा, तब अपमान करेंगे तो और भी खराब होगा, तो इस प्रकार। तो कैसे हम ये पार कर सकते हैं, भक्ति योगेन सेवते, क्योंकि वास्तविक ज्ञान अगर है, जैसे कृष्ण ने कहा, श्री प्रभुपाद ने भी कहा कि एक्चुअली हम आत्मा है, तो आत्मा की कर्तव्य है मामय वंश जीवालो के जीवर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के दास है, उन्हीं की सेवा कर। तो अभी यहाँ इसी श्लोक में बता रहे, अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है और सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो क्या होगा, हिंदी में क्या लिखा, लेकिन यहाँ ऐसे बोलने की समाग्रम प्रविलीयते, पूरी तरफ से लीन हो जाएंगे, ब्रह्मलीन। तो ये ब्रह्मलीन, ये भारत में सब लोग, ज्यादा लोग जानते कि हम भक्ति कर रहे, क्यों, कि भगवान से लीन हो जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा हो सकते हैं। इस श्लोक में बोल रहे समाग्रम प्रविलीयते, पूरी तरफ से क्लियर हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा हो सकते नहीं हो सकते। हाँ, इसी श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है उसको पढ़ना चाहिए। उसमें बोल रहे कि ब्रह्मलीन मतलब कि सारे कार्यों भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति जो भगवान, जैसे उदाहरण है कि नित्यानाम नित्यानाम चेतन चेतनानम एको भवनाम यो विदधाति कामन, कि जो आत्मा है, हो सकता है कि हम बद्ध जीव है फिर भी हम जीव है आत्मा, और जो भगवान है जो हमेशा तीन गुणों से परे है, कभी भी मोह माया में नहीं है, वो आत्मा भी नित्या है, अविनाशी है, और भगवान भी अविनाशी है, और भगवान के पास चेतना है और हमारे पास जो आत्मा है उनके पास भी चेतना है। लेकिन ये जो एक ही भगवान है वो सारे जीवों की जो इच्छा है, जो कामना है, वो पूरी करते हैं। यो विदधाति काम, एक बहुनाम, एक ही भगवान सारे जीवों के इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं और करते हैं। तो मतलब कि बद्ध जीव कैसे ब्रह्मलीन, इसका अर्थ क्या है कि सारे सारे जो मोह माया, जो तीन गुण है, जो आसक्तियां है, पाप है, उससे मुक्त हो जाएंगे और ब्रह्म अवस्था में आएंगे। तो ये वो जो श्लोक जो पहले बात हुआ कि भक्ति योग्य न सेवते ब्रह्म भूय सगुणान समति त्यजान ब्रह्म भूय कल्पते, कि व्यक्ति भक्ति योग भगवान की सेवा करते करते तीन गुणों को पार करेंगे, सारे मोह माया और पाप खत्म हो जाएगा, तब ब्रह्म भूत स्तर पर आएंगे। तो इसका अर्थ है तीन गुणों को पार किया, परंतु भक्ति योगा की अंत नहीं होगा वहां, वास्तविक भक्ति वहां से शुरू होगा। इसका दूसरा श्लोक में वर्णन है कि व्यक्ति जो ब्रह्मा स्तर पर आ गया तो ना सोचती ना आकांक्षती ब्रह्म भूय कल्पते। शुरुआत कैसे है श्लोक, ना सोचती ना आकांक्षती, उनको कोई शोक नहीं कर रहे, कोई इच्छा नहीं कर रहे, समा सर्वेषु भूतेषु मद् भक्तिं लभते परम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। यस, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना आकांक्षति, जो ब्रह्म स्तर पर आ गया वो शोक नहीं कर रहे, इच्छा नहीं कर रहे, और समा सर्वेषु भूतेषु मतलब कि सारे जीवों को एक समान देखे, द्वेष नहीं करना, तो तब भक्ति शुरू होगा। ब्रह्म भूय मतलब वो भक्ति मद भक्ति लभते परम, तब भक्ति शुरू कर सकते, शुद्ध भक्ति। तो हम देख सकते कि प्रैक्टिकली भागवत में बहुत सारे असुर थे जो भगवान को प्रत्यक्ष देख सकते थे, परंतु उनका आचरण अलग था और ये द्वेष से मुक्त नहीं थे। जैसे दुर्योधन, उन्होंने डायरेक्ट भगवान से ही बात किया जब कृष्ण शांति दूत में आ गया, कि अंतिम प्रयास हुआ कि युद्ध नहीं होगा कुरुक्षेत्र में, तब कृष्ण ही ये सेवा लिया कि मैं जाऊंगा और समझाऊंगा ये दुर्योधन और सबको कि ये युद्ध नहीं करना। तो जब वो आया वहां साबा में, कृष्ण ने कहा कि ये जो पांडव है, पांच है, तो वो क्षत्रिय है, उनका दान है राज्य करना, शासन करना है, तो पांच गांव दीजिए, तो वो अपना धर्म करेंगे और आप ही राज्य रहेंगे, आपके अंदर ही करेंगे। वो कृष्णा है उनको समझाने के लिए। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, हम जितना भी एक सुए के नोक, इतना जगह भी नहीं दूंगा बिना युद्ध। और बाद में उन्होंने दुर्योधन ने प्रयास किया कृष्ण को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये आया उनको बंद करने के लिए। कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, अलग अलग रूप में विस्तार हो गया, किसको पकड़ेंगे, मैं यहाँ हूँ वहां हूँ सब जगह। तो दुर्योधन फिर भी नहीं समझ पाए, स्वयं कृष्ण है उनके पास, उनसे बात कर रहे हैं, परंतु क्या है, इनके अंदर में द्वेष है, वो द्वंद्व से मुक्त नहीं है। और क्या है वो जो आचरण यज्ञ यज्ञाचरता, जो सारे कार्यों भगवान की प्रसन्नता के लिए करना वो नहीं कर रहे, जो भी कुछ कर रहे अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे। एक बार दुर्योधन ने कृष्ण को आमंत्रित किया कि आप आओ मेरे यहाँ, फिस्ट खाओ, मैं फिस्ट ग्रहण करो। तो ये दुर्योधन तो बहुत बड़ा फिस्ट का आयोजन किया कृष्ण के लिए, कृष्ण गए नहीं वहां, क्यों नहीं गए? अगर आपको कोई बुलाएंगे, नरेंद्र मोदी आपको बुलाएंगे फिस्ट खाने के लिए, जाओगे? जाएंगे ना, ऑफ कोर्स जो बाग थे शायद नहीं जाएंगे, बट बाकी जाएंगे। तो कृष्ण नहीं गए, क्यों नहीं गए? कृष्ण गए विदुर के घर पे, विदुर के घर पे जहां फीस नहीं था, कुछ तैयार नहीं था, वो अचानक से आ गए वहां। और वहां उन्होंने, विदुर भी नहीं थे, उनकी पत्नी थी, तो कृष्ण वो इतना आनंद में थी कि कृष्ण आ गया, उनको कुछ खिलाना है कुछ देना है। तो एक केला ही था, केला का छिलके निकाल दिया कि कृष्ण को केला खिलाएंगे, फिर भी वो छिलका ही केला ऐसे ही, तो कृष्ण ने वो ही खाया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दुर्योधन के अंदर में कुछ और उद्देश्य था, ऐसा नहीं था कि कृष्ण को फिस्ट खिलाना बस कृष्ण संतुष्ट होंगे, भक्ति नहीं था दुर्योधन के पास, भक्ति नहीं था उसमें, स्वार्थ था कि कृष्ण को भी अपने पक्ष में लेके आएंगे, और कुछ था अन्य कुछ अनन्य भक्ति नहीं था। लग रहा कि भक्ति किया, देखिए कृष्ण के लिए फीस तैयार किया, जैसे हम मंदिर में बार बार राजभोग और ऐसे भगवान को भोग लगाते, तो ये भी दुर्योधन ने ऐसा किया, लेकिन अंदर में जो इच्छा था वो अलग था, कृष्ण से कुछ और प्राप्त करना, स्वार्थ इसको बोलते हैं। इसलिए कृष्ण गए नहीं वहां। तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान के देख सकते हैं, उनको सेवा कर रहे हैं लेकिन स्वार्थ के साथ कर रहे हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे, तो तीन गुणों को पार नहीं कर सकते। और उनके अंदर में जो असुर है, उनके अंदर में द्वेष है, जब द्वेष है तो बिल्कुल तीन गुणों को पार नहीं कर सकते, नहीं समझ पाएंगे कि भगवान कौन है। ऐसे लोग सोचते कि हम ही भगवान है, कि मैं ही भगवान हूं। और ये जो बात, ये जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऐसा है कि पूरी तरफ से भगवान से लीन करना, लोग जो गंभीर नहीं है भक्ति में, जो स्वार्थ चाहते हैं, वो उसी शब्द समाग्रम प्रविलियते, वो गलत से समझेंगे और समझाएंगे भी, और बोलेंगे हाँ यही प्रमाण है कि हम भगवान बन सकते इस प्रकार। तो अगर व्यक्ति सोच रहे कि मैं भगवान बनूंगा, तो इसका आल है कि वो सबसे ज्यादा मोह माया में है, क्योंकि एक जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकते। जीव का जो आत्मा है उनका हमेशा नित्य दार में जीव भूत सनातन, कि हम हमेशा कृष्ण के अंश है और उनकी सेवा करना है। तो पूरा गीता में भगवान यही बताते हैं कि सेवा करना, समर्पण करना अपना जीवन कृष्ण की सेवा में। तो पूरी तरफ से सेवा में लीन, मन धन हम मानस देह हो गए, मन शरीर वचन संपत्ति ये सारे चीज भगवान की सेवा में उपयोग करना पूरा समय 24 घंटा, इसको बोल सकते कि हाँ लीन है भगवान से, भगवान की सेवा में लीन, कृष्ण की सेवा में लीन। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम मिक्स हो जाएंगे, हम ही भगवान बन जाएंगे। तो क्या है, लोग जो बहुत बहुत ज्यादा स्वार्थी है और साथ साथ इस संसार में निराश हो गया कि अभी सुख के लिए प्रयास किया बहुत लेकिन कभी भी सुख नहीं मिला, तो तब सोच रहे कि उससे अच्छा है कि हम भगवान ही बन जाएंगे, ये जो तुच्छ सुख है यहाँ पर मिलता ही नहीं, तो उससे अच्छा कि हम भगवान बन जाएंगे तो वहां तो कुछ सुख मिलेगा। भगवान कृष्ण क्या 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 रासलीला कर रहे हैं। हाँ, 108 रानियां हैं उनके पास, 16,108 केवल 108 नहीं, तो उनके पास इतना बड़ा द्वारका में महल है, इतना इतना संपत्ति है, तो इस स्तर पे हम भोग करेंगे तो ये और भी ज्यादा द्वेष है भगवान के लिए। और हो सकते कि असल व्यक्ति सब कुछ त्याग करेंगे कृष्ण की मतलब भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए, परंतु उद्देश्य होगा कि मैं ही भगवान बन जाऊंगा। तो इसका अर्थ है कि सेवा भाव खत्म हो गया, क्योंकि व्यक्ति जो भगवान बनना चाहते हैं उनका अपेक्षा है कि सारे लोग मेरी सेवा करेंगे। जैसे हिरण्यकशिपु, उन्होंने इतना तपस्या किया, देखिए इतना हजारों साल इतना कठोर तपस्या करना, मतलब उन्होंने बहुत त्याग किया, उस समय बहुत तपस्या किया, ऐसा नहीं कि तोरा किया और तोरा आराम भी किया, तोरा नहीं, पूरा फुल तपस्या हजारों हजारों साल, इतना कि उनका चमड़ी खत्म हो गया, उनका खून सब कुछ चीटी और अलग अलग क्या है कीड़े ने खा लिया पूरा, इतना तपस्या किया, लेकिन स्वार्थ था कि मैं कुछ अमार बन जाऊंगा। और बाद में जब आशीर्वाद मिला तो उन्होंने सारे देवतों को अपनी सेवा में लगाया और भगवान की सेवा बंद, पूरा संसार में सारे जो ब्राह्मण साधु जो भी कुछ धार्मिक अनुष्ठान था सब बंद, केवल उन्हीं की सेवा। नारद ने कहा कि मैं खुद ही उन्हीं की सेवा, उनका गुणगान किया, उस समय वो भागवत में आता है गुणगान, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान आएंगे वो सब ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा समय के लिए उन्होंने वहां भी इस बार में नारद हिरण्यकशिपु का गुणगान किया। गुणगान मतलब बाहर से, अंदर में तो भागते तो, लेकिन बाद में खत्म हो गया उनका जो राज्य था, ज्यादा दिन नहीं हुआ। तो ये हम इसमें हम देख सकते हैं कि भगवान सहन नहीं करेंगे ऐसे लोगों को, अगर भी तपस्या करेंगे और सोचेंगे कि हम भगवान बन सकते हैं तो फिर भी मोह माया में वापस गिर जाएंगे। ये वाना नहीं कि ये रविन्दक्ष विमुक्त मानिनस कि व्यक्ति जो भगवान के चरणों पर आश्रित नहीं है, उनकी सेवा नहीं कर रहे और मन में सोच रहे कि मैं मुक्ति प्राप्त किया, ये रविन्दक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भाव अविशुद्ध बुद्धय अरुह्य कृच्छ्रेना परम पदम तथा पतंत्यादो युष्मत् अंग्रह। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अगर कृच्छ तपस्या भी करेंगे मुक्ति प्राप्त करने के लिए परंतु भगवान की सेवा नहीं करते तो वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। विमुक्त माने मन में सोच रहे कि मैं मुक्ति प्राप्त किया और अविशुद्ध बुद्धय, उनकी उनकी जो बुद्धि है पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, इसीलिए उसका परिणाम होगा पतंत्यदो, वापस गिर जाएंगे इस संसार में मोह माया में। तो इसीलिए सबसे सरल तरीका भगवान को प्रसन्न मतलब तीन गुणों को पार करना, इंद्रियों को दमन करना, सारे द्वंद्व और मोह से मुक्त होना, ये सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करना है। नहीं तो सीधा मतलब अभी दोबारा हम इंद्रियों से हम कर सकते हैं लेकिन मन भी मतलब दिल भी भगवान को ही देना, सब कुछ बाहर से भी अंदर से भी, बाहर से भक्ति करना वो इतना कठिन नहीं। जब भी हम देख सकते कि ऐसे लोग भी बहुत कम है लेकिन ज्यादा जो करते भी तो ज्यादा हम दिखावा ही करते, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा चैतन्य चरितमृत में आते कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, और उसमें से बहुत कम लोग हैं जो धर्म पालन करते हैं, और इसमें उसमें से जो लोग हैं मनुष्य जो धर्म पालन करते उसमें से 90% 90% केवल नाम से ही करते नहीं। जैसे लोग बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मुस्लिम हैं, नाम से, लेकिन आचरण और दिल में क्या है वो अलग है, स्वार्थ है, इंद्रिय भोग का इच्छा है कि हम आगे बढ़ जाएंगे धर्म के नाम में भी। तो बाहर से करना ठीक है, आसान है, लेकिन वास्तव में हमारा मन और दिल भगवान को समर्पित करना, जो भगवान का आज्ञा है गीता में वो पालन करना, और दिन हर दिन साधना करना, और ये पूरा दिल साफ करना, वो बहुत दुर्लभ है कि कोई व्यक्ति ऐसे प्रयास करेंगे। इसलिए कृष्ण ने कहा कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतति अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्वतः। हजारों लोगों में से एक है जो कुछ प्रयास कर रहे हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और ऐसे हजारों सिद्ध व्यक्तियों में से एक हो सकते कि कृष्ण को जानते, कश्चित् मां वेति तत्वतः, वास्तव में कृष्ण को जानते। और अगर हम ऐसे देखेंगे कि कम से कम अगर व्यक्ति प्रयास कर रहे भगवान को समझना और उनकी जो आज्ञा है गीता में वो पालन करना, वो भी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो हमारी तरफ से कम प्रयास करना चाहिए, कम से कम प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, कम से कम जिज्ञासा होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि अंतिम में कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहते कि हम दुखी रहेंगे। कम से कम शुरुआत में जो बिल्कुल नया लोग हैं तो दुख समाप्त करने के लिए कई बार लोग भक्ति शुरू करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये हमेशा के लिए उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अगर हम दुखी हूं इसीलिए मैं भक्ति करूंगा। स्टार्ट के लिए ठीक है, शुरुआत करने के लिए ठीक है, लेकिन समझना चाहिए कि सुख और दुख में दोनों में भक्ति करना, ऐसे नहीं है कि अभी मेरा दुख समाप्त हो गया, अभी मेरे पास पैसा भी आ गया, एग्जाम भी पास हो गया, शादी भी हो गया, सब कुछ ठीक है, अभी चल रहा है, अभी मंदिर जाना और हरे कृष्ण जप करना जरूरत नहीं है, माला को रखेंगे अभी आराम, जब जरूरत होगा तब करेंगे, ऐसा नहीं। जो भक्त है और शुद्ध भक्ति का जो परिभाषा मतलब तो किया प्रतिहत निस्वार्थ भाव से हर एक परिस्थिति और हमेशा के लिए, बीच में कोई चुट्टी नहीं होना चाहिए, तो वो वास्तविक भक्ति होगा। और यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी तब हम परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा परंतु भगवान नहीं बनना, ये सबसे बड़ा स्मार्ट है, ये बार बार याद रखना है कि हम भगवान के दास हो सकते हैं। जितना ज्यादा हम दास दासों के दास बनने के लिए प्रयास करेंगे इतना अच्छा है। अगर हम बड़े भक्त भगवान बनना चाहते हैं तब नुकसान ही होगा, प्रॉब्लम होगा। तो ये सेवा जो है भगवान मौका दे रहे हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान गीता बताने से कि किस प्रकार किस भाव से सेवा करना। काम तो सब लोग करते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि तुम लोग साधु बन गए तो कोई काम नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं, हम बहुत अब तुम लोग जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, हम करते हैं। हाँ देखते हैं सही है कि लोग मेहनत करते हैं, आजकल तो बहुत कितना 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है। हाँ परिवार को पालन करना सही है, लेकिन परिवार को क्यों पालन करना, स्वार्थ के लिए, आसक्ति के वजह से। तो ये क्या जिम्मेदारी हम लिया। अगर हम समझ सकते कि मैं आत्मा हूं, अगर हम केवल शरीर के लिए जिम्मेदारी लिया और वो हम चलाते तो चलाएंगे, और वो वास्तव में हम भी नहीं चलाते, भगवान ही चलाते। प्रकृति क्रियमानि गुणाय कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के अंदर तीन गुण सारे काम करते हैं, केवल जो अहंकार विमुधात्मा करता मिति मान्यते, जो व्यक्ति है वो सोच रहे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं और प्रकृति चलाने वाला कौन है, माया अध्यक्ष न प्रकृति। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे अध्यक्ष के अंदर में ये मोह माया काम कर रहे हैं, इसीलिए हम कुछ चलाते ही नहीं। और हम जिम्मेदारी, जो वास्तविक जिम्मेदारी है हमारा धर्म सनातन धर्म, वो हम करते ही नहीं। सनातन धर्म मतलब कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये मुख्य काम है। साथ साथ पालन भी हो जाएगा, परिवार और ये सब चलाना है। इस श्लोक के अनुसार कि कर्म करना यज्ञ के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो ये मुख्य जिम्मेदारी है जीवा सारे जीवों का। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक द्वंद्व, तंगी लगेगा, गर्मी लगेगा, परेशान होगा बार बार। लेकिन इसीलिए शुरुआत में अगर हम प्रयास कर रहे भी भक्ति करने के लिए, हरे कृष्ण जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, गीता को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए, जो सिद्धांत भगवान दिया, तो कोई भी ये प्रयास करेंगे अनुभूति, तुरंत अनुभूति आएगा कि ये वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से हम वास्तविक संतुष्टि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये शुरुआत में भी अनुभूति मिल सकते हैं, तो इसे हम प्रेरणा मिल सकते कि हम आगे और गंभीरता से करेंगे। और जैसे अभी ठंडी है तो उसमें भी अनुभूति आ सकते हैं, अगर हम ध्यान रखते हैं उस समय। जब बहुत ठंडी लग रही, लग रही कि सहन नहीं कर पाएंगे, तब याद रखना है कि मैं आत्मा हूं, क्या समस्या है। थोड़ा देर के बाद गर्मी हो जाएगी, तब दोबारा परेशान हो जाएंगे। इसे उस समय भगवान को याद करना, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो ये सहन हो पाएगा। ये द्वंद्व में ये प्रैक्टिकल हम अभ्यास कर सकते हैं। इसीलिए बहुत बड़ा कृपा है भगवान की कि इतना ठंडी है, कि भगवान हमें चांस देते, मौका दे रहे कि हम अनुभूति प्राप्त करेंगे कि मैं आत्मा हूं। नहीं तो सब ठीक है, जब सब ठीक है तो हम या सोचते भी नहीं, प्रयास भी नहीं करते ये समझने के लिए कि मैं किस प्रकार में आत्मा हूं। बस हम स्वीकार किया गीता में है, हम आत्मा है, यहां तक। लेकिन जब ऐसे बहुत ठंडी आता है, बहुत प्रॉब्लम आते हैं, तब हम थोड़ा विचार कर सकते हैं कि नहीं, मैं तो आत्मा ही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या ही नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हम प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में सबसे ज्यादा अनुभूति हम मिल सकते हैं जल्दी अगर हम ये ज्ञान दूसरे लोगों को दे रहे हैं। अभी यहाँ पर दिसंबर मैराथन चल रहा है और अभी जनवरी में भी कंटिन्यू होगा। इसका अर्थ है कि ये जो दिव्य ज्ञान जो भगवान ने दिया, इसी मायने में कि ये सारे लोगों को देना है, ज्यादा ज्यादा लोगों को पहुंचाना है ज्ञान। अगर हम ये प्रयास कर रहे हैं, कोई भी बद जीव प्रयास करेंगे गीता को समझने के लिए और दूसरे लोगों को देने के लिए, तो भगवान की कृपा जरूर जल्दी ये अनुभूति आ सकते कि हम आत्मा है, हम कृष्ण के दास है, कृष्ण है, कृष्ण के बारे में अनुभूति। ये कृष्ण केवल पिक्चर नहीं है, ये मूर्ति वहां पर वास्तव में है ही। तो अगर हम प्रयास करें ये ज्ञान दूसरे लोगों को देना, तो ये सबसे बड़ा सेवा है। तो भगवान सबको मौका दिया अभी कलयुग में श्रील प्रभुपाद की कृपा से कि हर एक व्यक्ति, अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं है, आप अगर गीता के बारे में ज्यादा नहीं जानते, फिर भी आप इस ज्ञान दूसरे लोगों को दे सकते हैं। कैसे, अगर जानते नहीं कैसे बताएंगे, बताना नहीं ज्यादा, बस ये पुस्तक लेना है और किसी को देना है। बोल सकते ये बहुत अच्छा पुस्तक है, पढ़िए, अगर ये प्रयास करेंगे कम से कम। तो यहाँ पर बहुत सारे बुक्स है गीता, तो आप ले सकते हैं, एक पेटी, दो पेटी, दस पेटी, और सबको वितरण कर सकते हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, भगवान ने खुद बताया गीता में, तो तब आप देखेंगे, तब अनुभूति जल्दी आ सकते हैं कि हम आत्मा हैं, कि आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार है। कभी भी हम प्रयास कर रहे किसी को बताने के लिए गीता के बारे में, किसी को गीता को वितरण किया, तो तुरंत विशेष अनुभूति आता है। तो इतना आसान भी नहीं है कि क्योंकि सब लोग पढ़ना नहीं चाहते, तो ये भी एक तपस्या है कि दूसरे लोगों को ऐसे जैसे देना है, चाहते नहीं फिर भी देना है, तो भगवान प्रसन्न होंगे अगर हम ये प्रयास करेंगे कम से कम। अभी न्यू ईयर आने वाला है, सब लोग बनाते न्यू ईयर यहाँ पर, कोई ना कोई बनाते हैं, हाँ के ना? हाँ हाँ, वास्तव में न्यू ईयर में क्या अपेक्षा हो सकते हैं? क्या मीन पुराना साल वर्ष खत्म, अभी नया आएगा और अभी सब बढ़िया होगा? देखिए, अगर केवल उस दिन क्या बनाते हैं, रात को पार्टी बनाते हैं और नाचते डीजे में और पीते, पता नहीं क्या करते हैं, यहाँ पर विदेश में ऐसे करते हैं, पार्टी बनाते, सब लोग नाचे में उस दिन और 12 बजे वो करते हैं चीयर्स हैप्पी न्यू ईयर और सोचते, सबको बोलते कि आपका हैप्पी न्यू ईयर होगा, पूरा साल के बहुत हैप्पी होगा, लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो हैप्पी नहीं हो सकते। सब लोग हर साल न्यू ईयर में लोग बोलते कि आपका हैप्पी न्यू ईयर होगा, पर तो फिर भी सब लोग परेशान है उसके बाद। तो उससे अच्छा है अगर बनाना है कुछ तो उस दिन आप कीर्तन कीजिए और ये गीता रखिए, गीता और सब आपके मित्रों को दीजिए, तो तब हैप्पी न्यू ईयर हो सकते उनके लिए, जो गीता पढ़ेंगे और कीर्तन जब करेंगे तो उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर हो सकते, नहीं तो नहीं हो सकते, नहीं तो परेशान होगा न्यू ईयर। तो ये आप याद रखिएगा, अभी मौका है, भगवान की सेवा भी हो जाएगी और आपके जो फ्रेंड्स हैं और परिवार है वो सुखी हो सकते हैं न्यू ईयर में। बाकी अगर नहीं होगा तो, अगर उस दिन ज्यादा पार्टी करेंगे और शराब पिएंगे तो ज्यादा परेशान होगा एक्चुअली, क्योंकि पाप है। उससे अच्छा है कि आप लोग गीता दीजिए सबको, भगवान को, भगवान का प्रसाद वितरण कीजिए तो अच्छा, तब हैप्पी न्यू ईयर हो सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? पता नहीं समय है कि नहीं, जिज्ञासा है? हरे कृष्ण।
जन्म मृत्यु से पीछा कैसे छूटे?
क्या प्रश्न है?
जन्म मृत्यु से पीछा कैसे छूटे?
जन्म मृत्यु चाकर को कैसे छूटे? हम यही बात हुआ हमें क्लास में, अगर सरल श्लोक है, कृष्ण ने कहा कि मामोपेत्य तो काम थे या पुनर्जन्म ना भी देते, व्यक्ति जो कृष्ण के पास आएगा तो पुनर्जन्म नहीं देखेंगे, तो कैसे भगवान के पास जाना है? तो कृष्ण ने कहा कि मन मना भगवान भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम थे प्रतिजने प्रियो सिमे। अगर व्यक्ति कृष्ण को याद करेंगे बारम्बार, उनकी भक्ति करेंगे, भक्त बन जाएंगे, उनकी पूजा और नमस्कार करेंगे, तब कृष्ण ने कहा था मेरे पास आएंगे, उनके पास जाएंगे तो पुनः जन्म नहीं होगा। इसीलिए हरे कृष्ण जप करना चाहिए हर दिन, सुबह मंगल आरती और गीता पढ़ना चाहिए, तब धीरे धीरे जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते उन्हीं की कृपा से। तो आप हरे कृष्ण जप करते हैं? हाँ के ना?
करते हैं।
तो अच्छा है, करना है, और दूसरे लोगों को ये ज्ञान देना है। गीता वितरण कीजिए और पढ़िए, सारे नियम पालन करना है गंभीरता से, ऐसा नहीं है जन्म मृत्यु से मुक्त होना ये इतना आसान नहीं है कि हम थोड़ा इधर उधर करेंगे और बाद में, बहुत अच्छे से करना चाहिए गुरु के मार्गदर्शन के अंदर, तब भगवान की कृपा से हो सकता है। और भी किसी का कुछ प्रश्न है? सुना नहीं, माइक दे सकते?
कोई भी काम, खाना बनाना या और भी काम, तो बिना हाथों से का उपयोग करें अपन काम करते हैं, माला के लिए हाथों का उपयोग जरूरी है, तो काम अपन छोड़ देंगे, वो काम करते करते अपन जाप कर रहे हैं तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहता कि आगे जैसे माला का ही मतलब रहता है कि माला जरूरी
है। हाँ, समझ गया कि हरे कृष्णा करना, काम करना और हरे कृष्णा साथ साथ बोलना, ये ठीक है कि केवल माला में ही करना। हाँ, जो जो भी आप काम कर रहे हैं तब बोलना ही है, प्रयास करना कि बारंबार भगवान का नाम जप करना है। लेकिन उस समय समस्या ये है कि बीच में हम ध्यान नहीं दे पाते पूरी तरफ से। काम जब आप करते, आप बोलते रहते हैं, लेकिन साथ साथ आप भी सोचते कि ये क्या करना, कितना नमक डालना, कितना ये जल जाएगा, ये सब विचार आता है उसके साथ। तो इसलिए हम पूरी तरफ से ध्यान पूर्वक जप नहीं कर सकते जब हम काम करते, ठीक है। तो इसीलिए समय निकालना चाहिए और माला में बैठ के हरे कृष्णा जप करना, पूरी तरफ से प्रयास करना कि ध्यान पूर्वक स्पष्ट हरे कृष्णा जप करना, इसीलिए अलग से माला में भी करना और उस समय भी करना दोनों, लेकिन समय तो निकलना चाहिए, नहीं तो केवल नाम अपराध होगा। हरे कृष्ण,
भक्ति में मोटिवेशन,
भक्ति वास्तव में अपने आप मोटिवेशन है अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जैसे श्रवणम कर रहे हैं तो जब हम श्रवण कर रहे कृष्ण के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, तब अपने आप मोटिवेशन आना चाहिए अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के पुस्तक अध्ययन करना, वो पढ़ना चाहिए, श्रील प्रभुपाद के पुस्तक अध्ययन करना है, पढ़ाई करना चाहिए, तो उसमें प्रेरणा आएगा। श्रवण करने से प्रेरणा आएगा, मोटिवेशन आएगा भक्ति करने के लिए। जब हम सुनते पढ़ते भागवत में कैसे अलग अलग भक्त ने भक्ति किया, तब हम ये श्रवण करने से देखने से तब हम भी प्रेरित हो जाते कि हम भी प्रयास करेंगे। नहीं कैसे व्यक्ति मोटिवेट हो जाते शराब पीने के लिए या नाशा लेने के लिए, दूसरे लोगों को देखकर उनके साथ संग कर रहे तो वो उत्साह इच्छा आते वो करने के लिए। तो इस प्रकार प्रेरणा, ये जो आदि सत्संग प्रोग्राम है वो भी प्रेरणा के लिए है कि सब लोग प्रेरणा मिलेगा। नहीं तो हर एक व्यक्ति घर पे ही कर सकते माला, लेकिन कौन करेंगे अगर कभी नहीं आएंगे यहाँ, घर पे बैठेंगे और टीवी देखेंगे। लेकिन कम से कम अभी संडे में 2 घंटे के लिए आ गया तो उस समय कुछ प्रेरणा आएगी भक्ति करने के लिए। तो भक्तों का संग चाहिए, श्रील प्रभुपाद के पुस्तक अध्ययन करना, उनके प्रवचन सुनना चाहिए, तो प्रेरणा आना चाहिए भगवान की कृपा से, ठीक है। और कुछ
अरे गुरु का बनना जरूरी है, अगर भक्ति गुरु नहीं बन पा रहे हैं तो बिना गुरु के भक्ति कर देना तो कैसे नहीं होगा।
हाँ, गुरु के बिना, और ये पूरा विषय अलग बहुत लंबा हो सकते हैं, लेकिन कृष्णा खुद ने गुरु ग्रहण किया, अर्जुन ने गुरु ग्रहण किया कृष्ण को। तो वास्तव में देखिए, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप क्या काम करते हैं? जॉब, कौन सा जॉब?
रेलवे।
तो जो भी आप काम करते कि ये आप अपने आप सीख गए कैसे करना, ये कोई आपको सिखाया? टीचर ने सिखाया। स्कूल में बच्चे जाते तो क्या सीखते? खा खा गा गा, वो भी टीचर ही सिखाते। वो गुरु, गुरु जैसे हर एक छोटा काम करने के लिए अगर चपाती बनाना है तो वो भी कोई आपको सिखाएंगे नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो आप सोचिए, अभी भगवान की भक्ति करने के लिए तो इतना छोटी चीज नहीं है, उसमें मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, ये विचार जो है कि हम अपने आप भक्ति करेंगे और गुरु जरूरत नहीं है, ये पूरा भारत में ज्यादा लोगों का विचार इस प्रकार है। इसीलिए अलग 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 मत है भक्ति के बारे में, अलग अलग संस्था बन गए कि वो अपनी तरफ से करना चाहते हैं। लेकिन इसके वजह से जो वास्तविक सनातन धर्म है वो नाश हो रहा है। देखिए श्रील प्रभुपाद जो प्रमाणिक गुरु हैं, उन्होंने यथारूप ज्ञान दिया, तो इसीलिए हम अभी थोड़ा भाग्यशाली है कि हम इस ज्ञान प्राप्त किया और हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए बिना गुरु हम नहीं कर सकते, नहीं हो सकते, इसीलिए कृष्ण खुद सिखाते कि गुरु ग्रहण करना है। तद्विधि प्राणी पावते न परिप्रश्न सेवया उपदीक्षांति ते ज्ञान ज्ञान न तत्वदर्शी न, कि तत्वदर्शी के पास जाना है अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान समझना है। आपने आप भक्ति नहीं हो सकती। देखिएगा केवल नवविध भक्ति देखेंगे, श्रवणम जो पहला है, श्रवण कहाँ कैसे करेंगे आप? अगर बिना गुरु भक्ति करना चाहते तो श्रवण कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? तो गुरु सुनाएंगे ना तब श्रवण हो सकते हैं, तब सीख जाएंगे, तब बाद में कीर्तन करेंगे, भगवान को याद करेंगे। सारे शास्त्रों में यही उक्ति है कि बिना गुरु हम भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, और भी प्रश्न है तो व्यक्तिगत भी पूछ सकते हैं, अभी समय हो गया शायद। ये और किसी का कुछ है? और भी है?
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
भगवान का जाप करते करते भगवान का जाप किस तरह से करते?
भगवान का समझ में नहीं आया, भगवान का जाप।
हाँ, भगवान का जाप करते करते मन भी भटक रहा है, मन जाप में नहीं लग रहा है, तो उस समय भगवान मन को कैसे शांत करें और भगवान
का जाप कैसे करें? तो मन है कि मन कैसे क्या करना, कोई बड़ा समस्या नहीं है, जस्ट चैंट एंड हियर। इसका अर्थ है कि बोलते रहो हरे कृष्णा और प्रयास कीजिए श्रवण करने के लिए। हाँ, ये मन को भी श्रवण करना है कि हम मुझे सुनना है, हर एक शब्द मुझे श्रवण करना है, तो मन आएगा। मन का है कल्प विकल्प, चंचल है, परंतु तो प्रयास करना कि मन को स्थिर करना। एक अच्छा उपाय है कि जब माला करते बीच में कोई दूसरा काम नहीं करना, एक माला के बाद दूसरा माला, तीसरा, बारंबार। तो आप ऐसे करते करते अभ्यास तो मन लग जाएगा। अगर आप एक माला करते और सोचते कि बहुत हो गया तो अनुभूति नहीं आएगा, क्योंकि मन चंचल है। लेकिन आप करते रहेंगे, ज्यादा जब करेंगे अभ्यास प्रयास करेंगे श्रवण करना, तो मन लग जाएंगे। इसीलिए कलयुग में एक और चीज है कि थोड़ा जोर से बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जोर से बोलते हरे कृष्णा, तब मन प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए, अगर मन इधर उधर भाग गया, जैसे अगर आपके बच्चे जो है अगर पूरा घूमते रहते हैं पूरा घर, तो आप क्या करते उस समय? अब धीरे बोलते हैं आराम, तब आप चिल्लाते हे यहाँ बैठो, नहीं तब वो सुनते थोड़ा। तो इस प्रकार मन भी थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा हरे कृष्ण, तब मन लग जाएंगे। ऐसा और कुछ? हो गया। भगवद गीता यथारूप की जाय, श्री राधा माधव की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण।